ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ कल बनी सहमति का बार बार उल्लंघन हुआ है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मिसरी ने कहा कि सशस्त्र बल संघर्ष विराम उल्लंघन का उचित जवाब दे रहे हैं। भारत इन उल्लंघनों को बहुत गंभीरता से ले रहा है। भारत ने पाकिस्तान से संघर्ष विराम उल्लंघन को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाने तथा स्थिति से गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निपटने का आह्वान किया है। श्री मिश्री ने कहा कि सशस्त्र बलों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम उल्लंघन की किसी भी घटना से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं।
इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे।
विदेश सचिव श्री मिश्री ने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य ऑपरेशंस महानिदेशक ने कल दोपहर युद्ध विराम का आह्वान किया, जिसके बाद चर्चा हुई और सहमति बनी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर सहमति बनी। किसी अन्य मुद्दे पर और किसी अन्य स्थान पर बातचीत करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के तुरंत बाद एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष, तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने इसे तनाव कम करने और मौजूदा शत्रुता खत्म करने की दिशा में सकारात्मक कदम बताया। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि श्री गुटेरेश को उम्मीद है कि इस समझौते से शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद को हल करने में अनुकूल वातावरण उत्पन्न होगा। ब्रिटेन ने भी संघर्ष विराम समझौते का स्वागत किया है और दोनों देशों से तनाव कम करने की दिशा में कदम उठाने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा है कि ब्रिटेन संघर्ष विराम के लिए कुछ दिनों से दोनों देशों के साथ बातचीत कर रहा था। गृह सचिव गोविंद मोहन ने पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। सूत्रों ने बताया है कि राज्यों को सतर्क रहने, सीमा पार से किसी गोलीबारी से निपटने और अपने क्षेत्र में नागरिक रक्षा तंत्र को सक्रिय करने को कहा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद ये बैठक हुई। दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ानों की आवाजाही सुचारू रूप से जारी है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड डायल ने एक परामर्श में कहा है कि वर्तमान परिदृश्य में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए उड़ानों के समय में बदलाव हो सकता है और यात्रियों को सुरक्षा जांच के दौरान भी इंतजार करना पड़ सकता है। यात्रियों को संबंधित एयरलाइन के संचार माध्यमों से संपर्क में रहने और निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। सरकार ने कहा है कि कई युद्ध के गेमिंग वीडियो को हाल ही में भारत पाकिस्तान संघर्ष के वास्तविक फुटेज के रूप में भ्रामक रूप से प्रसारित किया जा रहा है। लोगों से ऐसे प्रचार वाले पोस्ट से बचने की सलाह दी गई है।
पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि युद्ध गेमिंग फुटेज सोशल मीडिया पर बड़ी मात्रा में दिखाए जा रहे हैं। लोगों को इनसे सतर्क रहना चाहिए। रक्षा मंत्री के कार्यालय के नाम से व्हाट्सएप पर एक संदेश भी प्रसारित हो रहा है। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की स्थिति के मद्देनजर नागरिक तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। पीआईबी ने कहा है कि ये संदेश फर्जी हैं और सरकार ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। इस महत्वपूर्ण समय में प्रत्येक जानकारी की सावधानी पूर्वक जांच करना महत्वपूर्ण है। कोई भी संदिग्ध सामग्री, विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित या मौजूदा स्थिति से संबंधित कोई भी जानकारी की सूचना पीआईबी फैक्ट चेक को देनी चाहिए। ऐसी सामग्री व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल आईडी socialmedia@pib.gov.in पर भी भेजी जा सकती है। नंबर एक बार फिर सुन ले, 8799711259।
पाकिस्तानी सेना की एक मिसाइल गलत निशाने पर अपने ही रिहायशी इलाके में एक गुरुद्वारे के पास जा गिरी। विस्फोट से गुरुद्वारे की खिड़कियां टूट गईं और लोगों में दहशत फैल गई। घटना के समय गुरुद्वारे में अरदास चल रही थी। पाकिस्तानी सेना की यह न केवल तकनीकी नाकामी है बल्कि ये कूटनीतिक और सामाजिक आपदा भी है। वर्ष 2022 और 2024 में भी ऐसी ही घटनाएं हुई थी जिसने पाकिस्तान की तकनीकी प्रणाली को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। पाकिस्तान की सेना चीन से आने वाले कबाड़ हथियारों, गलत तरीके से खरीद, सोशल मीडिया हेरफेर और झूठे अभियानों पर चल रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान में 39 स्थानों पर कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। हमारे संवाददाता ने आर्मी के हवाले से बताया है कि यह अभियान कई रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चलाया जा रहा है।
बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जियांद बलूच ने कहा है कि हमलों में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इनमें पुलिस थाने, सैन्य काफिले और प्रमुख राजमार्गों के किनारे ढांचागत केंद्र शामिल हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पुलिस थानों पर कब्जा करने और क्षेत्र की प्रमुख सड़कों पर नाकाबंदी करने का भी दावा किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लोगों की आजादी के लिए प्रयासरत एक सशस्त्र अलगाववादी गुट है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि बलूचिस्तान के विशाल प्राकृतिक संसाधनों का स्थानीय आबादी को लाभ पहुंचाए बिना दोहन किया जा रहा है और सरकार बलूच लोगों को उनके अधिकारों और स्वायत्तता से वंचित कर रही है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने आतंकरोधी कानून के अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अवामी लीग पार्टी की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ मुकदमा पूरा होने तक जारी रहेगा। एक रिपोर्ट।
सलाहकार परिषद की एक विशेष बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी दी गई, जिससे राजनीतिक दलों, उसके संबंध संगठनों या समर्थकों के समूह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई। यह प्रतिबंध गुरुवार रात से शुरू हुए और पूरे ढाका में फैलते विरोध प्रदर्शनों के बीच लगाया गया है। नवल संघ परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का नया दौर आज शुरू होगा। ये वार्ता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खाड़ी देशों की यात्रा के ठीक पहले हो रही है। ओमान की मध्यस्थता में रोम में 3 मई को होने वाली चौथे दौर की वार्ता स्थगित हो गई थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ओमान ने वार्ता के लिए आज की तारीख का प्रस्ताव किया था, जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल स्विट्जरलैंड में चीन के साथ हुई व्यापार वार्ता का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने मैत्रीपूर्ण और रचनात्मक तरीके से समझौते पर बातचीत की है। अमेरिका ने अधिकांश चीनी आयात पर न्यूनतम 145% शुल्क लगाया है। चीन ने जवाब में अधिकांश अमरीकी आयातों पर 125% शुल्क लगाने की घोषणा की थी। सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ के संदिग्ध हमलों में 33 लोगों की मृत्यु हो गई है। एल ओबेद में कल एक कारागार पर हुए हमले में 19 लोग मारे गए हैं। इससे पहले 9 मई को दारफुर में हवाई हमले में एक ही परिवार के 14 सदस्य मारे गए थे। ये हमले 2023 से सैन्य नेतृत्व वाली सरकार के सूडानी सशस्त्र बलों एसएएफ और आरएसएफ के बीच जारी युद्ध का हिस्सा है। इस युद्ध ने देश को दो भागों में विभाजित कर दिया है। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। वर्ष 1998 में इसी दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। यह दिन देश की प्रगति और विकास में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों को नमन करता है जो देशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए नई तकनीक विकसित करके योगदान देते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र गर्व के साथ वैज्ञानिकों के असाधारण प्रयासों को याद करता है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 27 मई को केरल तट पर पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। सामान्य तिथि से 5 दिन पहले इस मॉनसून के पहुंचने से खरीफ की बुआई और पैदावार अच्छी होने और जलाशयों का स्तर बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा है कि बोर्ड के अधिकारी और आईपीएल संचालन परिषद आज प्रतियोगिता पूरा करने के संभावित कार्यक्रमों पर चर्चा करेगी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बोर्ड ने शुक्रवार को आईपीएल निलंबित कर दिया था। प्रतियोगिता के 16 मैच शेष हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।